मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 9 मार्च 2018 है फ्रेंड्स, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने के नाम हैं शिव कुमार हापुड़ उत्तर प्रदेश से, प्रशांत कुमार सिंह बांका बिहार से, महेंद्र कुमार साहू महासमुंद छत्तीसगढ़ से, शंभु दयाल मीणा जयपुर राजस्थान से, वेद प्रकाश लोढ़ा गुना मध्य प्रदेश से, नीरज कुमार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, चंदन सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सनोज कुमार सौर्य सीतामढ़ी बिहार से, और अनिल कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो शिव कुमार, प्रशांत, महेंद्र, शंभु, वेद प्रकाश, नीरज, चंदन, सनोज और अनिल, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा अपने उन स्टूडेंट्स से जिनसे रविवार को मेरी मुलाकात होने वाली है, और जो इस तरह के स्टूडेंट हैं उनसे ऑडियो के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से यह मेरी अंतिम बातचीत होगी। अब इसके बाद जो बातचीत होगी वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होगी, जिसकी हम सब अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट यहां क्लासेस के लिए आने वाले हैं उनके माता पिता के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आभार इस बात के लिए कि उन्होंने एकेडमी पर विश्वास किया है, और विश्वास करने के बाद वे अपने बच्चों को अब यहां भेज रहे हैं। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एकेडमी अपनी तरफ से आपके विश्वास को बनाए रखने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। हर संभव कोशिश की जाएगी कि आप जिस उद्देश्य से बच्चों को यहां भेज रहे हैं, आपका वह उद्देश्य उनके टीचिंग में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहारों में शामिल होकर पूरा होने के करीब पहुंचे। दोस्तों, अब चूंकि स्टूडेंट कल से आने शुरू हो जाते हैं, तो क्लास में हम लोगों की जो मुलाकात होगी वह होगी रविवार को सुबह 11 बजे। लेकिन मुझे मालूम है कि स्टूडेंट उससे पहले आने शुरू हो जाते, स्वाभाविक है कि वो आएंगे ही। तो मित्रों, मैं इस ऑडियो के माध्यम से आप सबका, जो स्टूडेंट आ रहे हैं भोपाल की इस सुंदर नगरी में, एकेडमी की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप जब भी भोपाल की जमीन पर पैर रखेंगे, आप समझ लीजिए कि मैंने आपका स्वागत किया है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी यात्रा के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसे याद रखें, और प्लीज याद रखने के साथ साथ उन बातों को अपने व्यवहार में भी लाएं। जब तक आप व्यवहार में नहीं लाएंगे दोस्तों, सच पूछिए तो कोई परिवर्तन संभव नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आपको बताई जाएं और आप उन्हें सुन भी लें, और यहां तक कि आप उन्हें रट भी लें, लेकिन जीवन में कतई कोई परिवर्तन नहीं आता है। दोस्तों, आप थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदलें। आप एकेडमी से लेने आ रहे हैं और एकेडमी आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन जो आप लेंगे और जो हम देंगे वो किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी वस्तु है, भौतिकता से कई गुना ज्यादा बड़ी वस्तु। आप उसे कैसे ले जाएंगे? डेफिनेटली फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी जो मानसिकता है वो पहले की तुलना में बदलनी पड़ेगी। आप कस्टमर कॉन्शियसनेस के साथ मत आइए, उसको ड्रॉप कर दीजिए। कस्टमर कॉन्शियस का मतलब है कि आप ये मानकर चले कि हमने तो फीस दे दी है तो अब हमारा सब कुछ अधिकार ही अधिकार है। डेफिनेटली यदि आपके कुछ अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी कम नहीं हैं, और यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बड़े बड़े अधिकार भी आपके लिए आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। तो कर्तव्य और अधिकार, इन दोनों के मेल से ही सही मायने में लाभ की स्थिति आती है। आप आ रहे हैं, कुछ लेने आ रहे हैं, और जो कुछ भी लेंगे वो अपनी अपने मस्तिष्क में ही आप लेंगे, वहीं धारण करेंगे और वहीं उसी में धारण करके आप ले करके जाएंगे। तो प्लीज आप ये समर्पण के भाव को अपने अंदर उतारिए कि नहीं, मुझे लेना है, मुझे अनुशासन का पालन करना है, मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और चूंकि आप सब समूह में हैं, तो इस प्रकार से जब एक एक आप में से अपने कर्तव्यों और अनुशासन का निर्वाह करेंगे, तो मान करके चलिए कि पूरा समूह ही बहुत अनुशासित और कर्तव्य परायण बन जाएगा। और फिर ऐसे वातावरण में देखिए कि हम लोगों के जो 15 दिन हैं वो कितने अधिक लाभदायक और उपयोगी हमारे लिए सिद्ध हो सकेंगे। तो मित्रों, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का भोपाल नगरी में स्वागत करता हूं। आप सब आए, अपने अपने स्थानों पर पहुंचे, वहां अच्छी तरह से एडजस्ट हों। रविवार को 11 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। देखिए 11 बजे मैं कह रहा हूं, मुझसे 11 बजे मुलाकात होगी। आप लोग बाकायदे पहले पहुंचेंगे और अपना सब कुछ करते रहेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप लोग तो पहले ही पहुंच चुके होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने रूटीन की बातों पर। मुख्य विषय के अंतर्गत फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आप सबसे वायदा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के जो अभी थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसी पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए थोड़ी सी दो न्यूज देख लें। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारे प्रोग्राम भी हुए, न्यूज का काफी बड़ा हिस्सा उसको समर्पित था, जो स्वाभाविक ही है। उसको आधार बना करके फ्रेंड्स, मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2 साल पहले जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। अभी तक इसके कुछ सर्वे रिपोर्ट्स तो पढ़ने को नहीं मिली हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ जगह पर छुटपुट उस तरह की चीजें दिखाई देने लगी। और देखिए, ये सब जो योजनाएं होती हैं, डेफिनेटली तुरंत इसके उतने बड़े असर नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन की स्थिति होती है, चेतना में परिवर्तन लाने की बात होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे जन आंदोलन के साथ साथ इसे सामाजिक सरोकार भी बनाना होगा, मतलब ये हमारे एक तरह से सोशल सिस्टम में आ जाना चाहिए, वो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि जहां भी आपको इसके बारे में कुछ सक्सेस स्टोरीज मिले, प्लीज आप थोड़ा सा उन्हें नोट डाउन कर लें। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इस पर कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन एक तथ्य प्रीलिम्स के हिसाब से आपको याद रखनी है कि पहले यह देश के कुछ ही जिलों में शुरू किया गया था, अब यह पूरे देश के सभी जिलों में 640 जिलों में लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही पोषण मिशन की भी शुरुआत की गई है, पोषण मिशन, जिसके लिए 9,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब ये जो पोषण मिशन है, देखते हैं पोषण मिशन के बारे में जब चीजें हमारे सामने आएंगी तब निश्चित रूप से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको सतर्कता के तौर पर बताना चाहूंगा कि पोषण मिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप अपनी नजर रखें। मित्रों, जो दूसरी खबर है वो बेसिकली वो है विशेष राज्य के दर्जा देने से ही संबंधित, लेकिन उसका एक दूसरा एंगल भी है, उसकी चर्चा मैं अभी यहां कर रहा हूं। देखिए, विशेष दर्जा का जो एंगल है वो हम संविधान और एक्ट के तहत करेंगे, है ना, कि हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है और क्या नियम है, उसके तहत हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो मेंस की दृष्टि से बात कर रहा हूं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये धारणा पर आधारित है। और आपके मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मालूम है, वो धारणाओं पर आधारित होते हैं, कंटेंट पर आधारित नहीं होते हैं। थोड़े से ही क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप कंटेंट पर बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए, धारणा क्या है? धारणा यह है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा संविधान किस तरीके का है, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली किस तरीके की है, तो 2 शब्द आपके दिमाग में कौन थे? एक तो हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, राइट। लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि बहुमत की सरकार होती है, ठीक है। हालांकि लोकतंत्र के, ठीक है, बहुत अलग अलग रूप है, लेकिन मैं भारत के संदर्भ की बात कर रहा हूं। जो बहुमत में होगा वो सरकार बनाएगा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, राइट। जो दूसरा है, हम फेडरल स्ट्रक्चर के हैं, यानी कि हम संघात्मक हैं, राज्य भी है और केंद्र भी है। और हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की हुई है कि हमारा जो संघीय स्वरूप है वो बना रहे और अच्छी तरह से काम करता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। ये 2 हमारी बहुत बड़ी विशेषता संविधान की है, और ये हमारी राजनीतिक प्रणाली भी है, राइट। अब आप देखिए कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नो डाउट अपने आप में बहुमत में है, लोकसभा में उनका अपने ही दल का बहुमत है, लेकिन चूंकि चुनाव पूर्व एक गठबंधन किया गया था। तो ये भी जो सरकार है, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, वो गठबंधन की सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, राइट, कोलिशन गवर्नमेंट है जहां दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, ठीक है। इनके दो सदस्यों ने जो तेलुगु देशम पार्टी के थे मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया, राइट, मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मैं इनकी बात इसलिए कह रहा हूं कि ये दूसरी पार्टी के हैं, ठीक है। त्याग पत्र क्यों दिया, इसलिए कि तेलुगु देशम पार्टी ये डिमांड कर रही है कि उनके राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये उनकी मांग है, ठीक है। सरकार के सामने संकट यह है कि नियम के तहत उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अदरवाइज फिर वो डाइवर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम पार्टी है वो इस तथ्य को जानते हुए भी नहीं समझ रही है, तो सरकार पर क्या बना रही है, वो दबाव बना रही है, देख रहे हैं ना आप। सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, सरकार गिरेगी नहीं, अल्पमत में नहीं आएगी, वो अभी अपने आप में ही वो सक्षम है, लेकिन वो एक दबाव बना रही है। और याद रखिए कि जो दबाव होते हैं वो केवल तात्कालिक रूप में काम नहीं करते, आगे भी काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चुनाव होने अगले साल लोकसभा के, तो अगर तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया हुआ था कि आंध्र प्रदेश में वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अब वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। फिर तेलुगु देशम पार्टी हो सकता है कि दूसरी पार्टियों से अलाइन हो जाए, वो लोग मिलकर के चुनाव लड़ें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आंध्र प्रदेश में कम हो जाए, तो लोकसभा में उसकी सीटें कम हो जाए। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है यही कहलाता है दबाव, तो ये दबाव है। अब देखिए कि जो तेलुगु देशम पार्टी का दबाव है, इसे आप राजनीतिक दबाव कह सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में यह राजनीतिक दबाव नहीं है, यह आंध्र प्रदेश के लोगों का दबाव है। आंध्र प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले, राइट। अब आप यहां फेडरल स्ट्रक्चर देखिए, यही आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखना, फेडरल स्ट्रक्चर इस रूप में देखना है कि यदि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार होती, यह कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होती, तब वो इस तरह का दबाव नहीं बना सकते थे। तो अगर आप दबाव नहीं बना सकते हैं तो फिर राज्य की आकांक्षाओं को केंद्र के सामने कैसे रखेंगे, ठीक है। संसद में बहस के तहत आप रख सकते हैं, लेकिन सरकार पर दबाव तो नहीं डाल सकते, और लोकतंत्र में दबाव की बहुत बड़ी भूमिका होती, प्रेशर ग्रुप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो बट नेचुरल है कि फेडरल स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों इसी तरह से डेमोक्रेसी भी है, देखिए डेमोक्रेसी तो यही है ना कि बहुमत का शासन है, तो बहुमत के तो तानाशाह बनने का खतरा होता है, तो अगर कॉलिशन का शासन होगा तो कम से कम जो बड़ी पार्टी है वो उस तरीके से तानाशाह बनने से बचेगी। हमें तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप यूं कह लीजिए कि अपनी ही इच्छा से सरकार चलाने से वो बचेगी, क्योंकि दूसरों को भी उसे एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से भी है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेंस में हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं, और जब भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो आपको उसे इसी रूप में लेना भी चाहिए, राइट। आइए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जो मेरा मुख्य विषय है मित्रों, ये दो तेलुगु देशम के जो दो हमारे मंत्री थे उनके त्यागपत्र पर ही आधारित है, जिसे मैंने विशेष राज्य का दर्जा टाइटल दिया है। और आप जानते हैं कि उनके त्यागपत्र देने के पीछे उनकी यही मांग है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने कल की थी, बहुत ही इंट्रोडक्टरी थी, आइए अब जो वक्त है थोड़ी सी इस पर ज्यादा बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात नहीं की गई है मूल संविधान में, याद रखिए संविधान में नहीं, मूल संविधान में जब संविधान बना था तब। लेकिन बाद में संविधान के भाग 21 में ये आपको याद हो जाना चाहिए, प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, उनको थोड़ा सा लिख करके और बार बार दोहराते रहना चाहिए, तो उससे आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ये आपको पूरे संविधान के अनुच्छेद और भाग को याद करने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई संबंध करेंट अफेयर से होता ही है, और चूंकि अभी करेंट अफेयर है, ये इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में, इसको लेकर के चर्चा हो रही, तो आपको मालूम होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप कम से कम इस टॉपिक के प्रति तो अतिरिक्त तैयारी करेंगे ही। तो यह है संविधान का भाग 21 और उसके अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 10 राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं, राइट, बस इतना ही आपके लिए जानना पर्याप्त है। 10 राज्य को भी अगर आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, कुछ राज्यों के बारे में आप कह सकते हैं उपबंध किए गए हैं। इसमें जो अनुच्छेद, अब चूंकि मामला आंध्र प्रदेश का है अभी, हालांकि अब बिहार भी शामिल हो गया है, बिहार पहले से मांग रहा था, अभी शामिल नहीं हुआ, बिहार पहले से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन चूंकि अभी मामला आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश के लिए अब आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसको थोड़ा सा विशेष उपबंध करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया जो 32वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, 32वां, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, और ये किया गया था 1973 में। उसमें उस संशोधन के द्वारा कुछ उपबंध किए गए हैं और राष्ट्रपति को उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, राष्ट्रपति को, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जिनकी जरूरत है तो उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है, नौकरियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो मित्रों, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ये आपके किताबों में अवेलेबल हैं, इन्हें आप देख लेंगे और आपको थोड़ा सा देख भी लेना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मित्रों, अब आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के सामने संकट क्या है, थोड़ा सा आइए हम इसकी पृष्ठभूमि को दे देते हैं। 1969 में, 1969 में पहली बार, जो उस समय 5वां वित्त आयोग था, उसके सुझाव पर 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, और उसके जो पैमाने थे वो ये थे कि वो ऐसे राज्य जो दूसरों की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जैसे पहाड़ी जो राज्य होंगे वो भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों, और आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हों, ठीक है। तो इनको आधार बना करके जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी, जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए, जैसे पहाड़ वाले राज्यों को चुना, दुर्गम क्षेत्र जो दूर दराज में रह रहे हैं या जहां तक पहुंचना मुश्किल है, दूर दराज तो नहीं कहना चाहिए, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है, जहां की जनसंख्या बहुत ही कम है, जबकि अगर जनसंख्या बहुत कम होगी तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो आदिवासियों का क्षेत्र हो, क्योंकि वो फिर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से डेफिनेटली पिछड़े हुए होंगे, या जहां से, जिन राज्यों से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हों, और जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, ऐसे राज्यों की पहचान की, राइट, और उसके तहत 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। उस समय असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, और फिर बाद में 11 राज्यों को यह दर्जा मिला, ठीक है। प्रॉब्लम यह आई 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत इन सबको हटा दिया गया, और उसमें कह दिया गया कि केवल नॉर्थ ईस्ट जो हमारे, आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, और पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार के सामने वर्तमान में संकट है, और संकट ये भी है कि मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश को दे भी दिया गया संशोधन ला करके, या संसद से संशोधन लाना होगा, मेरी समझ से जहां तक है, इस बात को आप हटा दीजिए कि संसद से संशोधन लाना होगा या नहीं, लेकिन विशेष राज्य दर्जा देने का जो प्रावधान है, मैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद वो संसद से पारित कराना होता है। तो दूसरे और राज्य भी हैं जिनमें बिहार मांग कर ही रहा है, उड़ीसा है, राजस्थान है और गोवा है, वहां की सरकार भी विशेष राज्य, विशेष दर्जे की मांग कर रही है, क्योंकि जब उन्हें विशेष दर्जा मिल जाता है तो क्या है कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसमें 90% उसका अनुदान हो जाता है और 10% राज्यों को लौटाना पड़ता है, लेकिन बिना ब्याज के। तो आप सोच करके देखिए कि उन राज्यों को कितना पैसा मिल जाता है, और विशेष दर्जा देने का उद्देश्य ही यही है कि उन्हें आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, सशक्त किया जाए, जबकि दूसरे राज्यों को सामान्यतः जो केंद्र सरकार पैसा देती है तो उसमें 30% ही अनुदान के रूप में होता है, विशेष राज्यों को 90% हो जाता है, और बाकी जो 70% जो धन दिया जाता है उस पर बकायदे ब्याज लिया जाता है, जबकि उनको जो 10% रकम जो दी जाती है उस पर भी ब्याज नहीं लिया जाता। तो आर्थिक रूप से कह लीजिए कि ऐसे विशेष दर्जा प्राप्त होने पर उन राज्यों को बहुत बड़ा संबल मिल जाता है। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो मुख्य विषय के तहत मुझे आपके सामने रखनी थी। बाकी आपको अखबारों में अभी आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स जब मिलेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। मित्रों, अब जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से चार मित्रों के नाम हैं शुभम सिंह, हार्दिक मंगेला, अजय वर्मा वेरावल से और हनी सिंह मुंबई से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अंत में एक सूचना, और सूचना यह है कि चूंकि रविवार से क्लासेज शुरू हो रही हैं तो अब मेरा पूरा समय 15 दिन के लिए इन स्टूडेंट्स के साथ बीतेगा। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है, आपको बकायदे लाइफ मैनेजमेंट भी सुनने को मिलेगा, आपको बकायदे डेली ऑडियो लेक्चर भी सुनने को मिलेगा, लेकिन उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट पैटर्न किसी भी मायने में अभी के पैटर्न से आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट तो अब जो बदला हुआ पैटर्न आप सुनेंगे इसे ही हमेशा हमेशा के लिए अपना लेने की बात कहते हैं कि सर इसी पैटर्न पर ही डेली ऑडियो लेक्चर को चलाया जाए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। जो सूचना है वो आप जानते हैं, शनिवार रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। दोस्तों, क्लिपिंग्स आपको कल देखने को मिलेंगी, योजना और कुरुक्षेत्र के आपको चार आर्टिकल्स मिलेंगे, साप्ताहिक प्रश्न भी आपको दिया जाएगा और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें भेजा जाएगा। तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।